نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. فاصبر، بس صبر کیجئے. صبر کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا، اور صبر بار بار آپ دیکھیں گے مکی صورتوں میں، تو آپ اتنی دفعہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا ہی کہا گیا. اور اصبر واحد کا صیغہ ہے، 18 مقامات پہ قرآن پاک میں واحد کے صیغے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف صبر کرنے کا کہا گیا. صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت اتنا زیادہ یعنی برداشت کا تھا، اتنی ایزا تھی. پہلے شروع کے جو سال تھے مکی دور کے، پہلے 3 سال، وہ تو وربل جو پرسیکیوشن تھی اس کے تھے، زبانی ایزائیں پہنچائی جاتی تھی، کہ ان کو یہ تھا کہ ہم ان کو ایسا توڑ دیں، ایسی ان کی ول پاور ہی جب ختم ہو جائے گی. کسی کو آپ، کسی کی جو ول پاور ہے یا جو کام کرنے کے اس کا جذبہ ہے یا اس کو جو آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، وہی ختم کر دیں گے تو پھر کیا رہ جائے گا؟ نہ اس کے کوئی فالوور رہیں گے نہ کچھ ہے، کیونکہ یہی لیڈر ہے. انہی کو کہہ کے وہ کہتے ہیں نا، وربل ابیوز سے ہی دوسرے کو مار دینا، کہ پھر دوسرا کہتا ہے کہ بھاڑ میں جائے، یہ کام ہے، سب کچھ جائے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں ان کو بتاؤں اور سب کروں، چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں، بس ان کا کام ہو گیا. تو سٹارٹ ہمیشہ وربل ابیوز سے ہی ہوتا ہے. تو کہا گیا آپ صبر کریں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا پچھلے سبق میں کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا اپنے رسول کی اور ایمان والوں کی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ ان کو ضرور پکڑے گا آپ کے دشمنوں کو. تو لیکن آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، آپ کو سہنا پڑے گا. آپ یہاں پہ نوٹ کریں، پیغمبر سے بھی مدد کا وعدہ صبر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کہ آپ کو لیکن صبر کرنا پڑے گا. یہ نہیں ان کو بھی کہ ادھر کوئی مشکل آئی، اگلے دن نہیں ان کے لیے آسمان سے کوئی مدد اتر پڑی، فرشتے اتر پڑے. دیکھیں کتنا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، 13 سال کی مکی زندگی صبر کی تو زندگی تھی. کون سے فرشتے اترے تھے وہاں پہ؟ صبر تھا یا نہیں تھا؟ ہم تو کہتے ہیں اگلے دن اللہ کی مدد آنی چاہیے، اگر نہیں آئی تو بس اب تو ہمارا ایمان ہی پھر اٹھ جاتا ہے نا، پھر اللہ ہے کہاں کہ کوئی ہماری نہیں مدد کی اس نے. اپنے پیغمبر کو جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صبر کریں ان گالیوں پہ، ان تانوں پہ، ان پھر بعد میں تو فزیکل بھی ابیوز شروع ہو گئی تھی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں یہ ستم توڑے جا رہے تھے، آپ کے ساتھیوں کو جس طرح ٹارچر کیا جا رہا تھا اس سب کے اوپر فرمایا صبر کریں آپ، صبر. حتیٰ کہ مسلمان ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ صحابی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی مدد جلدی آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. آپ صبر کریں، آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ کی مدد اترے. اللہ آزماتا ہے پہلے کہ کون ہے جو صبر کرتا ہے. تو دائی کو جب بھی کوئی دعوت دینے والا اٹھتا ہے، اس کی ضرور کریکٹر اسیسینیشن بھی ہوتی ہے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا جاتا، کبھی جھوٹا کہا جاتا، کبھی مجنون کہا جاتا، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں تو کبھی کچھ. لیکن کیوں وہ کہہ رہے تھے ایسے؟ کیا چاہتے تھے وہ؟ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں، بس اپنا بوریا بستر گول کریں، یہ کام ختم کر دیں، یہ کام نہ کریں. اب ایسے وقت میں صبر کیا ہوگا؟ برداشت کرنا، جھیلنا اور چلتے چلے جانا، رکنا نہیں ہے، یعنی اپنے کام کو جاری رکھنا اس ساری مخالفت کے باوجود، रुक गए तो वो तो सबर नहीं है ना कि अच्छा मैं सहता जाता हूँ, ये मुझे ये कह रहे हैं मैं सहता जाऊं, नहीं करते चले जाओ काम को। तो 18 टाइम्स कुरान पाक में सबर 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 की बात आई है, अकेले आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर मदनी दौर में फिर तो सबको इज्तमाही तौर पर ही आई ना कि सारे ही सबर करें, मदनी दौर में भी सबर था लेकिन मक्की दौर का सबर डिफरेंट था, वो इस सारे टॉर्चर के मुकाबले में। और उस दौरान साबित कदमी, आप साबित कदम रहे, आप रुके रहे, आप सबर करते रहे, आप चलते रहे, तब आप डिजर्व करते हैं अल्लाह की मदद। ये किसको कहा जा रहा है? कोई आम बंदे को नहीं, अल्लाह के नबी हैं उनको कहा जा रहा है कि इस टेस्ट में आप साबित कदम रहेंगे तो मदद आएगी। इसीलिए हम देखते ना, पढ़ते हैं कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नबी अब यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह ना हो जाना, मछली वाले की तरह ना हो जाना, कि वो बेसब्रे होके निकल गए थे ना, परमिशन नहीं अभी आई थी और वो चले गए थे, हमने पढ़ा है ना, जरा सी बेसब्री हुई थी और कहां से कहां उनको मछली के पेट तक अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया, बेसब्री का नतीजा था ना। तो आप उनकी तरह नहीं हो जाना, सबर को छोड़ना नहीं है। और तमाम बड़े बड़े पैगंबरों ने सबर किया। सबर है, होता क्या चीज है सबर? असल में उसका डिक्शनरी मीनिंग अगर देखे जाए ना, हलवा एक बहुत कड़वी चीज होती है, ये माना है सबर का। हलवा एक कड़वा सा चीज होती है जिससे ब्लड को प्योरिफाई किया जाता है। तो वाकई सबर जो है ना, हलवा खाना मुश्किल है ना, तो सबर भी बड़ा मुश्किल है। सबर वाकई हलवा ही है, इतना कड़वा होता है लेकिन इसका फल बहुत मीठा है। इसपे इंसान को अपने आप पे बड़ा ही जबर करना पड़ता है, बहुत रोकना पड़ता है, वरना देखिए ऐसा इतनी कड़वी चीज कोई खा ही नहीं सकता। आप समझ लें जैसे हमारे यहाँ नीम होती है, कितनी कड़वी होती है, तो सबर भी बड़ा कड़वा है। तो सबर तीन तरह के होते हैं ना, एक तो अल्लाह की इताअत पे सबर और उसके हुक्मों पे चलने के लिए सबर करना, चाहे आप ये देखें कि अल्लाह का कोई हुक्म आ जाए, मिसाल के तौर पे आज अगर शरीयत में है कि हलाल खाने का, तो अब आप उसके लिए आपको सबर करना पड़ता है तो हलाल खा सकते। हराम बहुत रीचेबल है, बहुत इजी है, एक्सेसिबल है, लेकिन हराम से बचना सबर से ही होगा ना। आपको अल्लाह का हुक्म है कि आपने फजर के लिए उठना है, अब सारी रात नहीं आप सो सके, बच्चा सताता रहा या आप बीमार रहे, सारी रात कराते रहे, फजर के बाद आपको मीठी नींद आई, अभी तो सोने का टाइम था, अब अल्लाह की इताअत पे सबर करना क्या है, उस वक्त उठ के नमाज पढ़े। इताअत पे भी सबर के बगैर इताअत भी नहीं हो सकती, सबर के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता, ना कोई नेकी का हो सकता है, ना गुनाह से बच सकते। इसीलिए दूसरी किस्म का सबर जो है ना, वो कोई भी नाफरमानी अल्लाह की है उससे खुद को बचाना, वो भी सबर है। कितनी ही आपके अंदर टेम्पटेशन हो कि मैं भी ऐसे कपड़े पहनूं, मैं भी ऐसी सजूं, मैं भी ऐसी समरूं, मैं भी ऐसी नजर आऊं, मैं भी ये करूं, लेकिन अल्लाह का हुक्म है तो मैंने सबर करना, अपने आप को रोक लेना, बंद बांध देना, ये सबर है। और फिर सबर एक आजमाइश पे भी होता है, आजमाइशों पे सबर, ये वाला सबर था जो मक्की जिंदगी का सबर था, कि ये टेस्ट आए, कोई टॉर्चर कर रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, हो सकता है आज भी किसी को ऐसा सबर करने की जरूरत हो कि उसके अपने घर वाले उठ के उसके खिलाफ खड़े हो जाए, अल्लाह के उसमें अहकाम पे ना चलने दें, हो सकता है घर वालों की तरफ से सताना उसको कोई शुरू कर दे, उस वक्त अल्लाह पे भरोसा करना, उस पे एतमाद रखना और चलते चले जाना। ये वो जो मैंने बताया ना हलवा, समझ ले कड़वे घूंट है, कड़वे घूंट पीते चले जाना, जब्त कर लेना, बर्दाश्त कर लेना, छोड़ना नहीं है। लेकिन ये जो हम कहते हैं ना, मुझे नहीं अब जरूरत, अब मैं तो बस कल से छोड़ रही हूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई है, मैं ऐसे ही ये बातें सहूं, नहीं, अल्लाह का हुक्म है जब तो चलते चले जाना, छोड़ना नहीं है, यहीं पे तो सबर चाहिए, बर्दाश्त कर जाए, चाहे वर्बल अब्यूज है चाहे फिजिकल है,
कोई कहेगा तुम्हारी तो अकल फेर गई है, तो इसका तो दिमाग ही खराब हो गया, मुल्लानी हो गई है। कोई कोई हंसेगा, कोई ताने देगा, कोई कुछ करेगा। देखिए वो सब सहाबा कराम ने भी तो सबर ही किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा जा रहा है? सबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सबसे ज्यादा आप सबर नहीं सीखते? फिर क्यों छोड़ देते हैं, फौरन गिव अप कर देते हैं? और सबर तमा पे भी होता है कि कोई लालच भी दे, ये भी एक आजमाइश ही है ना, कोई लालच भी दे तो फिर भी लालच में नहीं आना। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा था कि आपको हम अपना सरदार बना लेते हैं, अपना बादशाह बना लेते हैं, या आपने जिस औरत से भी शादी करनी है आप हमें बता दें, उस पे उंगली रखे हम वो वाली औरत आपके शादी करा देते हैं, खजाने आपके कदमों में ला देते हैं, और आपको क्या चाहिए? ऐसे वक्त में भी खुद को रोकना कितना मुश्किल है, ये भी सबर, सबर चाहिए। नहीं, और इसकी मिसाल एक इमाम अहमद बिन हम्बल की जिंदगी से मिलती है। आपको पता है ना उनका जो मसला कुरान का जो हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि कुरान जो है वो अल्लाह की मखलूक नहीं है। तो जो खलीफा वक्त था तो उसने कहा था कि ये इसको मान जाए कि ये मखलूक है ना, तो उस वक्त उनको जेल में भी रखा गया, इतना टॉर्चर किया गया, इतनी मार मारी गई कि ये किताबों में लिखा था कि अगर हाथी को भी उतनी मार मारी जाती तो वो चीख उठता, लेकिन उनकी आंखों से कभी आंसू नहीं बहे थे, बर्दाश्त किया, सबर सबर सबर। फिर वक्त बदल गया, दूसरा खलीफा आ गया, दूसरे खलीफा का भी वही जो जो इमाम अहमद बिन हम्बल कहते थे वही उसका भी मौकफ था। तो अब वो उस खलीफा ने एक अपना एलची भेजा अशरफियों की थैली देके, कि वो आया और उसने कहा कि ये खलीफा ने आपको भेजी है। उस वक्त इमाम अहमद बिन हम्बल रो पड़े, वो जो उतनी मार से नहीं रोए थे अब उनके आंसू निकल आए, कहने लगे या अल्लाह मैं इस आजमाइश का अहल नहीं, ये उस आजमाइश से ज्यादा सख्त है जो मुझे जेल में मार पड़ी थी, उससे ज्यादा सख्त है कि अब माल मेरे पास आ रहा है। तो ये भी एक, इसमें भी सब्र की जरूरत होती है। जैसे हमने अभी पढ़ा है ना कि तमराहून करते हैं और तफराहून करते हैं, जब नेमते मिलती हैं, माल आता है तो कैसे इंसान मस्त हो जाता है, कैसे वो इतराने लगता है। तो ये आजमाइश होती है ना, इंसान कम ही लोग अपने आप को इन कंट्रोल रख पाते हैं, वो किधर से किधर उनके दिमाग पहुंच जाते हैं, तकब्बुर से वो आसमानों में उड़ने लगते हैं, अपने जैसा किसी को समझते नहीं। वो कहने लगे या अल्लाह ये मैं इस आजमाइश का अहल नहीं हूं, अल्लाह ये उससे ज्यादा सख्त आजमाइश जो मुझे वहां पे मार पड़ी थी, वो सहना मेरे लिए यानी आसान था, ये जो आजमाइश है ना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि बड़े बड़े इसमें फिसल जाते हैं, बड़े बड़े फिसल जाते हैं। ये जो माल है ना, इसीलिए ये माल बुरी चीज नहीं है, लेकिन इसीलिए इसकी इतनी मुजम्मत है, क्योंकि ये इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरते थे। वो खौफ था कि मेरी उम्मत, ये नहीं मैं कहता कि मेरी उम्मत के ऊपर फकरो फाका होगा और ये होगा, मुझे ये डर है कि इनके पास इतना माल आ जाएगा। और फिर देखो ईमान का क्या हाल रह जाता है, दीन का क्या हाल रह जाता है, वही जो आज हमारा है। तो सबर, ए नबी आप सबर कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो सबर के ये सारे ही मराहिल आए, कि ये जो एब्यूज हुई, ये वर्बल एब्यूज हुई, और किस तरह उन्होंने एक दफा ऐसा मारा पीटा था, उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक छुड़ाने के लिए आए थे आगे, और किस तरह उन्होंने ओजड़ी ऊंट की रख दी थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज्दे में गए थे। और ओजड़ी उस वक्त रखा करते थे किसी को, जैसे फांसी देते हैं ना, तो उसके लिए इस तरह से करते थे कि ओजड़ी ऐसे रख देते थे कि उसका सर ओजड़ी के अंदर चला जाता था, वो सर उसमें से निकल ही नहीं पाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज्दे में गए, वो करीब काफिरों के सरदार खड़े रहते, उन्होंने ऊंट एक जिबा हुआ था उसकी ओजड़ी उठाई और आपके सर पे डाल दी, और उसका वो जो खून और पानी और वो आपके ऊपर पड़ रहा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर नहीं उठा पा रहे थे। उस वक्त किसी ने जाके अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को इतला दी और वो भागी भी आई, गालिबन हजरत फातिमा रज़िल्लाहु तआला अन्हा थी, और उन्होंने आके इसको हटाया। हर तरह का टॉर्चर हुआ था। फर्स्ट सुबेर, ए नबी आप सबर करें, लेकिन आपने क्या करना है, बस सबर, कुछ रिएक्शन नहीं। इन्ना वादल्लाहि हक, देखिए अल्लाह ताला कैसी प्यारी तसल्लियां दे रहा है, अल्लाह इनसे इंतकाम लेगा ना, अल्लाह का वादा है, अल्लाह आपकी मदद करेगा, लेकिन जल्दबाजी ना करें। अगर यही चीज हम अपना लें, हम जिस जिस सिचुएशन में भी, बहुत सारी बहनें बहुत सारे मसले मसाइल बताती हैं, ये जब हम ये करना चाहते हैं तो ऐसी हमें यानी मुखालफत सहनी पड़ती है। ये आप ये देखें कि जब अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमा दिया आप सब्र करें, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह के वादों पे यकीन करें, उसके वादा जरूर पूरा होता है, आप साबित कदमी से चलते जाएं, दुआएं करते जाएं, बर्दाश्त करें, लेकिन अल्लाह के रास्ते से ना हटे। तो फिर देखें वो दौर आया ना, अल्लाह ताला ने फतुहात भी दी, वक्त बदला, अल्लाह ने इन लोगों से इंतकाम लिया, इसीलिए फरमाया ऐ नबी फइम्मा नुरियन्नक वअल्लज़ी नअदुहुम औ नतवफ्फयन्नक फइलैना युरजऊन। अगर हम आपको दिखा दें बाज वो जो हम डरा रहे हैं उनको जिससे, यानी अगर हम अजाब दिखा दें इनको आपकी जिंदगी में, आपको दिखा दें जो इनके ऊपर अजाब आता है, या हम आपको फौत कर लें, आपके फौत करने के बाद, आपको उठाने के बाद, अब देखें यहां पे भी फौत करने का लफ्ज है, और बाज लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत ही नहीं हुए, वो जिंदा है अभी, वो कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि उनकी बर्थडे मनानी है या नहीं मनानी, तो वो तो फौत हो गए हैं, तो हम तो ये मानते हैं कि फौत हुआ ही नहीं, वो तो जिंदा है, तो अब हम उनकी बर्थडे मनाएंगे। तो अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि अगर हम आपको फौत कर दें या हम आपको फौत कर दें, तो फइलैना युरजऊन, तो हमारी तरफ सबको पलटना है, आपको भी उनको भी सबको आना है, तो आपकी जिंदगी में यानी हम इनको सजा दे दें, इनको अजाब दे दें, या हम आपको दुनिया से उठा लें फिर इनके ऊपर अजाब लेकर आए, तो आना तो सबको हमारी तरफ है। और आपने देखा कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही अल्लाह ताला ने आपकी आंखें ठंडी की, कि जंगे बदर में, जिसको यौमुल फुरकान भी कहते हैं, कि उस दिन सबको फर्क पता चल गया, कितने थोड़े से मुसलमान थे और कितने बड़े बड़े सरदार काफरों के, 70 के करीब सरदार जो है उनके मारे गए, और फिर मक्का भी जब फतह हो गया था, उनकी सरदारियां चली गई, उसके बाद तो पूरा जजीरा अरब ही जो था वो इस्लाम ले आया था ना, तो इनकी इज्जत क्या रह गई फिर, वो तो अपनी इज्जत बचाने की खातिर, बनाने की खातिर इस्लाम कबूल नहीं करते थे ना, क्या वो रह गई फिर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इस चीज की फिक्र ना करें कि उनको क्या पकड़ होती है या उनको सब, आप अपना काम करते चले जाएं, इनसे इंतकाम लेना हमारा काम है, इनका इलाज करना हमारा काम है, चाहे आपकी जिंदगी में हम आपको दिखाएं कि इनके साथ हम क्या करते हैं या आपके बाद, लेकिन हिसाब लेना हमारी जिम्मेदारी। अब देखिए ना, अल्लाह ताला को कोई जल्दी नहीं है, जिसको ये डर होता है ना कि भाई अगर मैंने इनको ना पकड़ा तो ये कहीं भाग जाएंगे, फिर काबू नहीं आएंगे, तो वो तो फिर कहता है जल्दी पकड़ लो, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया इलैना युरजऊन, हमारी तरफ सारे लौटाए जाएंगे, अगर अजाब में देर भी हो जाती है तो ये मतलब नहीं वो बच जाएंगे, उन्होंने जाना कहाँ है, आना तो हमारे पास ही है, अल्लाह की पकड़ से बाहर तो नहीं है। वलकद अरसलना रसूलन मिन कबलिका, अलबत्ता तहकीक भेजे हमने कई रसूल, मिन कबलिका आपसे पहले, मिनहुम मन कससना अलैक व मिनहुम मन लम नकसुस अलैक, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके हमने आपको किस्से बयान किए हैं, जिनकी बातें आप देख लें, आप उनके किस्से पढ़ते हैं, उनका जिक्र पढ़ते हैं कुरान में, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक हमने नहीं आपको बयान किया, और ऐसे भी हैं कई पैगंबर ऐसे हैं जिनका हमने जिक्र नहीं पढ़ा कुरान में, और इसके बारे में ये भी आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि कितने पैगंबर आए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1,24,000, उनमें से 313 जो थे वो रसूल थे, सारे रसूल नहीं, कुछ बाकी नबी थे और रसूल, मैंने आपसे पहले फर्क भी बताया दोनों में। तो अल्लाह ताला ने बाज का तो जिक्र फरमा दिया, जैसे कुरान पाक में बाज कहते हैं 25 का जिक्र है, बाज कहते हैं 28 का, क्योंकि दो तीन के मुतल्लिक कहते हैं कि ये एक ही का नाम है, तो हम किन किन का जिक्र हम देख चुके हैं, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इदरीस, सालेह, हूद, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, लूत, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून, शुआइब, जकरिया, यहया, ईसा, दाऊद, सुलेमान, इलियास, यसा, जिलकिफल, ये कहते हैं एक ही हैं शायद, इसलिए 25 को बताते हैं, अय्यूब, यूनुस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन इन सब को अगर गिना जाए तो 25 है, 25 है, लेकिन तीन हैं ऐसे जिनको इनकी नबूवत में इख्तलाफ है कि कहा जाता है पता नहीं है ये नबी हैं या नहीं, अगर इनको मिला लें तो फिर 28 है। और वो कौन कौन है? ज़ुलकरनैन, उज़ैर और लुकमान। लेकिन बाज़ उलमा ने इनकी इख्तलाफ किया कि पता नहीं नबी थे या नहीं थे। बाकी 25 तो आपने लिख लिए होंगे कि कौन कौन से। तो ये हैं जिनका अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, आपको बताया है, आपको इनके बारे में मालूम है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो दुनिया में आए लेकिन हमें नहीं पता कि वो कौन से थे। इससे पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना इल्म था, कितना था इल्म, यहां से क्या पता चलता है? सिर्फ उतना जितना कि अल्लाह ताला ने आपको बता दिया। और हम कभी एग्जैजरेशन इतनी करते हैं, इतनी ज्यादा करते हैं कि पिछले दिनों मैं सुन रही थी किसी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म तो ऐसा था कि खबर को भी खबर नहीं होती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हो जाती थी, आपको खबर होती थी। तो आपका इल्म जो ना, सब चीजों का इल्म आपको था। तो हम इतने आसमान जमीन के कलाबे मिलाते हैं, मोहब्बत का इजहार इसी में समझते हैं कि अगर हमने कह दिया कि उनको सब चीजों का इल्म था, जितना अल्लाह ताला ने दे दिया उनको भी उतना ही इल्म था। तो अल्लाह ताला ने, यहां से पता चलता है कि हर दौर में, हर दौर में इंसानों को गाइड करने के लिए इंतजाम किया। देखे ना, ये पैगंबर हर दौर में अल्लाह ताला ने भेजे, उन्होंने तरह तरह से इंसानों को वॉर्न किया, कभी डरा के, कभी धमकियां देके, कभी जन्नत का बता के, कभी जहन्नुम का बता के, और जो कायनात में निशानियां उनको दिखा के। तो अल्लाह ताला ने इंतजाम किया, इसके बावजूद लोग नहीं समझे, नहीं माने। लेकिन ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला ने नहीं बताया, अल्लाह ताला ने हर दौर में इंसानों को बताया, उनकी रहनुमाई की है। यार ये भी अल्लाह ताला का देखिए कितना बड़ा एहसान है ना, कि उसने इंसानों को गाइड करने के लिए भेजा है, रसूल भेजे हैं, वो चाहता है कि इंसान बच जाए। इसका मतलब पहले वक्तों के अंदर भी रसूल आए, लेकिन याद रखिएगा कि सब रसूलों का पैगाम लेकिन एक ही था, सब रसूलों का। और अब अगर कोई कहे कि मैं उन किसी और पुराने रसूल के ऊपर ईमान ले आता हूँ जो पिछला गुजर चुका है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनके दरमियान में जितने रसूल आए बेशक सब का पैगाम एक ही था, लेकिन उनकी शरीयतें डिफरेंट थी और उनकी शरीयतें कैंसल हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना अब जरूरी है, क्योंकि आप सब अंबिया को के खातिमुल अंबिया हैं, यानी एंड हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आना। जो आपके रसूलों ने पे ईमान लाया वो मोमिन होगा, और जो आपके खातिमुल रसूल होने पे ईमान नहीं लाया वो अब मोमिन नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता मैं पिछले किसी रसूल पे ईमान ले आया, मैं ईसा अलैहि सलाम पे ईमान ले आया तो वो काफी है, मैं मूसा अलैहि सलाम पे ईमान ले आया तो काफी है। एक बात यहाँ पे थोड़ी सी से ज़िमनन सामने रखना चाहती हूँ कि देखें, कई रसूल ऐसे गुजरे हैं कि जिनको आज कोई भी नहीं जानता, इनका नाम तक नहीं किसी को पता। ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बताया गया, हमें भी नहीं पता कि उनका क्या नाम था, मगर अल्लाह के हाँ वो भी पैगंबर का मकाम रखते हैं ना, चुने हुए हैं, है ना। आज देखें हम अपने आप को देखें, हम वही काम करना चाहते हैं जिसमें नामवरी हो, शोहरत हो, हमारा नाम बने, हमारी पहचान हो जाए। हर एक ये चाहता है कि दीन का भी वही काम करें जिसमें हमारी कोई कोई शोहरत हो, कोई नेकी का काम भी हो तो कोई शोहरत हो, जिसमें वो पता चले, कोई जाने, कोई तारीफ करे। तो देखें ये तो पैगंबर कितने गुमनाम है, इनको तो कोई जानता ही नहीं,
لیکن ان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کو معلوم ہے. علیہ اللہ بھی کافی نہ بتاؤ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کا جاننا کافی نہیں ہے؟